बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद बैदी शराफ़त हाज़िर है और अंदाज़े जहाँ में आज हम गुफ्तगू करेंगे पाक हिंद रवाबित के बारे में। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। नाज़रीन, 11 और 12 जून को रावलपिंडी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खारजा सेक्रेटरियों के दरमियान मुज़ाकरात अंजाम पाए, माँ फरमाएंगे दिफाई सेक्रेटरियों के दरमियान मुज़ाकरात अंजाम पाए। इन मुज़ाकरात में सियाचिन से फौजें हटाने के लिए पाकिस्तान की तजवीज़ पर गुफ्तगू हुई। यह तजवीज़ पाकिस्तान के आर्मी चीफ अशफाक परवेज कियानी ने उस वक्त पेश की थी जब सियाचिन के इलाके में एक बड़ा बर्फानी तोता गिरने से पाकिस्तान का एक फौजी कैंप बर्फ में दब गया था। इस सानहे में 129 पाकिस्तानी फौजी और 11 आम शहरी जां बहक हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज कियानी ने इलाके के दौरे में कहा था कि सियाचिन में फौज रखने पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मुल्कों को भारी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं, इसलिए दोनों मुल्कों के हक में है कि यहाँ से अपने फौजियों को वापस बुला लें और जो रकम यहाँ फौज रखने पर सर्फ हो रही है उसे रिफाही उमूर पर खर्च किया जाए। इसके बाद पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने गैर सरकारी दौरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात में भी इस मसले को उठाया था। इसी तनाजुर में गुज़श्ता पीर और मंगल को रावलपिंडी में दोनों मुल्कों के दिफाई सेक्रेटरियों के दरमियान मुज़ाकरात अंजाम पाए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के वफूद ने सिफारिशात तैयार कर ली हैं और गोया की तय पाया है कि वो सिफारिशात अपनी हुकूमतों को पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, जहां पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और तजिया निगार प्रोफेसर नज़ीर हुसैन साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नज़ीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी शराफत साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जनाब, रावलपिंडी में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दिफाई सेक्रेटरियों के दरमियान जो मुज़ाकरात अंजाम पाए हैं उनकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं।
जी, तफसीलात सामने भी आई हैं और आइंदा दौर का भी इन्होंने इरादा कर लिया है।
जी,
असल में हमें देखना यह है कि मौजूदा जो सेक्ट्री लेवल के ताल्लुकात या मीटिंग हुई है,
जी,
इसके पीछे जो आपने खुद अपने इब्तदाइये में फरमाया एक पस मंज़र है जिसमें सियाचिन का मामला शामिल है
जी,
और उसके बाद जो पाकिस्तान के सदर जरदारी साहब का दौरा भारत शामिल है
जी।
आपको मालूम है कि गुज़श्ता 65 सालों के दरमियान पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो ऊंच और नीच का शिकार रहे हैं, और हालिया जो मुंबई अटैक हुआ था 2008 उसके बाद से ताल्लुकात नहायत ख़राब थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पे आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे भारत के साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी साहब की एक बात बहुत याद आ रही है। उन्होंने कभी ये फरमाया था कि पाकिस्तान और भारत दो हमसाए हैं और हमसायों के लिए तब्दील होना, यानी कि जोग्राफ़ी का तब्दील होना बहुत मुश्किल है, लिहाजा ये हम दोनों ममालिक के लीडरों पर आवाम पर मुनहसर है कि वो किस हालत में रहना चाहते हैं, जंग की हालत में रहना चाहते हैं, अमन की हालत में रहना चाहते हैं, खुशी की हालत में रहना चाहते हैं या लड़ाई की हालत में रहना चाहते हैं। दूसरी बात इस ज़मन में ये है कि देखिए, अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ना भारत एक जंग अफोर्ड कर सकता है ना पाकिस्तान एक जंग अफोर्ड कर सकता है, लिहाजा इस वक्त जो अमन है वो एक स्ट्रेटजिक ऑप्शन है, और लड़ाई जो है वो एक दूर की बात है जो ना भारत अफोर्ड कर सकता है, ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है, और ना ही यह खत्ता अफोर्ड कर सकता है। लिहाजा इस ज़मन में, इस बैकग्राउंड में जो हालिया मीटिंग हुई है बहुत खुशाइन है। दोनों सेक्टरी दिफा ने अपने अपने जो मुल्कों का जो मौक़िफ़ था वो सामने लाया है और सामने पेश किया है। आपको और हमारे नाज़रीन को ये मालूम होना चाहिए कि सियाचिन का मसला तकरीबन 1989 में हल हो चुका था। उस वक़्त के वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और भारत से वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने आलमोस्ट हर चीज़ जो है वो डिसाइड कर ली थी। लेकिन जब ये माहदा जो है, जो भी डॉटेड लाइंस पे बात होनी थी, जब ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो उनके नरसिम्हा राव साहब थे उनको पेश किया गया, तो उन्होंने इनको साइन करने से इनकार कर दिया था। और उसकी कोई वजूहत होंगी, वो शायद उनको ज़्यादा मालूम होगी, उस पर एनालिसिस भी हुए हैं। लेकिन सियाचिन का मामला बड़ा अजीब सा है कि इस पर भारत और पाकिस्तान की फ़ौजों से ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वहाँ के मौसम से हो रहा है, वहाँ की बर्फ़ से हो रहा है, वहाँ की जो मौसमी हालात हैं उनकी वजह से हो रहा है। और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि 11 सेक्टर में अभी जो हाल ही में एक हादसा हुआ जिसमें 130-135 नौजवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, वो एक बहुत बड़ा सानिया था और एक बहुत बड़ा आई ओपनर था। लिहाजा जनरल परवेज कयानी ने ये बात सही कही थी कि हमें इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। आप हमारे नाज़रीन को ये भी मालूम होना चाहिए कि भारत की तरफ से भी कई बार इस चीज़ का इयादा हो चुका था, बल्कि इस पर यह भी बात हो चुकी थी कि सियाचिन को हम एक पीस पार्क के तौर पे, अमन के बाग के तौर पे भी सामने लाते हैं और पेश करते हैं, और इस इलाके में, इस खित्ते में डीमिलिटराइजेशन हो जाएगी। लेकिन अभी लगता यह है कि कुछ डेडलॉक आ गया है। और अभी जो मुझे भारतीय मीडिया से या भारतीय अखबारात से कुछ चीज़ें मिली हैं उसमें यह है कि यह अजीब बात है, हमारे साथ भारत में दोस्त हों, इस बात की तरफ इस तवज्जो मबजूल करवाएं कि फ़र्स्ट टाइम एवर हमें यह सुनने में और देखने में मिल रहा है कि भारत की सेना ने, भारत की फ़ौज ने जो है इस पे नो ऑब्जेक्शन कर दिया है कि हम इस वक्त सियाचिन के मामले में अपनी फ़ौजें जो हैं वापस नहीं हटा सकते। लिहाजा एक मौक़ुफ़ है, लेकिन खुशाइन बात यह है कि दोनों सेक्रेटरी दिफा ने बातचीत की है, अपने ममालिक का मौक़ुफ़ पेश किया है। ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की और भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप पे, वो इसको कैसे देखते हैं। और अभी ये भी बता दें आपके नाज़रीन को कि 18 जुलाई को दिल्ली में जो सरकरी के मामलात हैं उस पर भी बातचीत होगी। तो लिहाजा देखते हैं कि अब ये बर्फ़ जो है वो सियाचिन पे तो पिघलना शुरू हो जाए, लेकिन दोनों मालिक के दरमियान जो बहुत से नाजुक मराहिल हैं, नाजुक कंटेंशियस इश्यूज हैं, जिनमें सियाचिन सर फहरिस्त है और इसके बाद सरकरी का मामला है, उसमें किस कदर पेशरफ्त होती है, जो आइंदा आने वाले दिनों के लिए ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा पैगाम होगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तजिया निगार वैद प्रताप वैदक साहब मौजूद हैं। वैदक साहब, आदाब अर्ज़ है। वैदक साहब, दोनों मुल्कों के दरमियान सियाचिन के ताल्लुक से दिफाई सेक्रेटरियों के जो हालिया मुज़ाकरात रावलपिंडी में हुए हैं, उनके बारे में हिंदुस्तान में क्या तासुरात पाए जाते हैं, क्या तज़िया है वहाँ पे?
हिंदुस्तान में इन दोनों की बातचीत को लेकर जी बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंध गई थीं, लेकिन 2-3 दिन पहले हमारे वज़ीर दफा ने ये जाहिर कर दिया जी कि इस बातचीत में से कुछ खास निकलने वाला नहीं है
जी।
तो अभी जो बातचीत के नतीजे सामने आए हैं उससे हिंदुस्तान में कोई ज़्यादा बदगुमानी फैली नहीं है
जी।
सब ये मान के चल रहे हैं कि ये मामला बड़ा उलझा हुआ है और इसमें दोनों तरफ से कुछ न कुछ ज़्यादा मांगे की जा रही हैं
जी।
दोनों तरफ को कुछ झुकना पड़ेगा, कुछ सुधरना पड़ेगा, कुछ ढीला होना पड़ेगा, तभी ये मामला हल होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब पिछले दिनों हमने सुना कि 11 में 130 या 40 लोग पाकिस्तान के बेवजह मारे गए, तो पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में बहुत दुख सब ने महसूस किया और सबको लगा कि यहाँ से फौजें हटाई जानी चाहिए। जो पाकिस्तान के लोगों ने महसूस किया वही हिंदुस्तान के लोगों ने महसूस किया। बल्कि ये हम लोगों ने कुछ लिखा और कुछ बोले हमारे यहाँ के टीवी और रेडियो पर
जी।
कि ये जो सबसे ख़तरनाक चीज़ें हैं दोनों मुल्कों के बीच में, जो लड़ाई की वजूहात हैं, यही सबसे ज़्यादा मोहब्बत की चीज़ें बन सकती हैं। यानी सियाचिन का मसला जिस पर बहुत झंझट चल रहा है, वही हम दोनों मुल्कों को पास लाने का कारण बन सकता है। जो मसला कश्मीर का दोनों मुल्कों को खींच के रखा है, वही दोनों मुल्कों के बीच एक पुल बन सकता है, एक सेतु बन सकता है, एक ब्रिज बन सकता है
जी।
तो ये एक इमोशनल अप्रोच था, भारत भी बड़ा मुतासिर हुआ था। लेकिन अभी हमको इससे जो टॉक्स लोग कहते हैं कि फेल हो गई, इससे कोई बहुत निराशा नहीं हो रही है, क्योंकि टॉक्स में कुछ मुद्दे आपकी तरफ से रखे गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से रखे गए हैं, कुछ हमारी तरफ से रखे गए हैं। असल बात यह है कि जो सियाचिन का पूरा इलाका है उसके ज़्यादातर इलाके पर भारत का कब्ज़ा है
जी।
और जो अधिक जो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं उन पर भी भारत का कब्ज़ा है। तो उस कब्ज़े को छोड़ने में भारत को ज़रा दिक्कत तो आएगी, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर पाकिस्तान के लोग पूरा इत्मीनान दिला दें, और ज़रूर दिलाएंगे, क्योंकि कयानी साहब ने जितने अच्छे तरीके से वो बात कही थी और जरदारी साहब ने भी कही थी, उससे मुझे लगता है कि एक माहौल बन रहा है और वो माहौल बड़ा पॉजिटिव है। कोई पाकिस्तान के बारे में आज सारे अखबारों ने कई एडिटोरियल्स लिखे हैं
जी,
लेकिन बहुत निगेटिव बात किसी ने लिखी नहीं है। वो तकलीफ़ें दोनों तरफ से मान रहे हैं, और अगर ये टॉक सफल नहीं हुई हैं तो उसके लिए दोनों तरफ से जिम्मेदारी है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब। नज़ीर हुसैन साहब, यह सियाचिन के सिलसिले में हिंदू पाकिस्तान की जानिब से जो तजवीज़ पेश की गई थी, उसमें एक काबिल तवज्जो बात यह थी कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह की जानिब से पहली बार अमन के अमल को आगे बढ़ाने की बात की गई थी कि भाई अमन का अमल आगे बढ़ाया जाए, और फौजी बजट पे जो रकम खर्च की जा रही है वो दोनों मुल्कों के रिफाही बजट पे उस पे खर्च किया जा सकता है, इस बजट को कम करके। उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही थी कि दोनों मुल्कों के फौजी और तरक्याती बजट में तवाजुन नहीं पाया जाता है। ये एक ऐसी बात थी कि जिसकी शायद हिंदुस्तान वालों को भी तवक्को ना रही हो। इस पर जो हिंदुस्तान की तरफ से जवाब आया, उससे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलके, ख़ास तौर पर मीडिया वाले, कितना मुतमईन हैं, और हिंदुस्तान के जवाब पर उनका रद्द अमल क्या रहा है?
देखिए श्रावण साहब, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि जो इस वक्त भारत में अवामी हलके हैं, जो भारत में इसका सफारती सॉरी जो सहाफ़ी हलके हैं, और जो तंजीमें हैं जिनको हम NGOs कहते हैं, उनकी तरफ से बड़ी पेजर आई है। उनकी तरफ से जो पीपल टू पीपल यानी आवामी ताल्लुकात जो हैं, लोगों का आना जाना जो है, उसको बड़ी पेजराई हासिल हो रही है। और ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है कि अगर दोनों मालिक के लोग आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आपस में आए जाएंगे, तो बहुत सी रंजिशें, बहुत सी कदूरतें, बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। आपको ये बात हमारे नाज़रीन को भी मालूम है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये 65 साल का मसला नहीं है, गुज़िश्ता कई दहाइयों का, कई सदियों का मसला है। तो इस माइंड सेट को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि ताल्लुकात जारी रहें, ताल्लुकात उस्तवार रहें, आना जाना बरकरार रहे, और ये छोटे मोटे जो मामलात हो जाते हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी वजह से जो रियासती ताल्लुकात हैं या अवामी ताल्लुकात हैं, उनको धचका नहीं पहुंचना चाहिए, वो हर हाल में कंटिन्यू करने चाहिए। इसमें दूसरी बात ये है, जो कियानी साहब के बयान के मुतल्लिक आपने फरमाई, देखें एक फ़ौजी जो है उससे ज़्यादा अमन की या उससे ज़्यादा एक अमन की ख्वाहिश की जो बात है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि एक फ़ौजी ने जंग देखी होती है, एक फ़ौजी ने लाशें देखी होती हैं, एक फ़ौजी ने खून खराबा देखा होता है, एक फ़ौजी ने देखें, अगर लड़ाई होती है तो चाहे उस तरफ से लोग मरें या इस तरफ से लोग मरें, ज़िया तो है डेफिनेटली, वहाँ के भी लोगों का ज़िया है, यहाँ के भी लोगों का ज़िया है। तो एक फ़ौजी ऑफिसर को सबसे ज़्यादा यही फिक्र होती है कि देखें, जंग किसी सूरत का किसी भी मसले का हल नहीं है। दुनिया में कितनी जंग है, वर्ल्ड वॉर वन टू हो चुकी है, लेकिन अल्टीमेटली निगोशिएटिंग टेबल पे आके दोनों मामलात को बात करनी पड़ती है। इसमें जो इस ज़मन में बात है कि पाकिस्तानी हल्के इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा अप्रिशिएशन से बात की जाती है, लेकिन एक बात जैसे हमारे भारत से भाई ने भी बात की है, देखिए एक दो मुलाकातों में सारी दीवारें, सारे मसले, सारे मामलात हल नहीं होते, कुछ गिव एंड टेक यहाँ से भी होता है और कुछ एंड गिव एंड टेक वहाँ से भी होता है। और इस ज़मन में जो दूसरी बात की है, उस ज़मन में ये एक और बात अर्ज़ कर दूँ कि इस वक्त साउथ एशिया, जिसको हम जनूबी एशिया कहते हैं, दुनिया की 1/5 पापुलेशन यहाँ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा गुरबत यहाँ है, दुनिया की सबसे ज़्यादा मैलन्यूट्रिशन यहाँ है, दुनिया का सबसे ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ये जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मैटर्स कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है कि यानी साहब की बात यह बहुत हद तक मुनासिब है कि अगर एक मेजर चंक ऑफ डिफेंस बजट जो है दोनों मालिक का, पाकिस्तान का भी और भारत का भी, अगर इस मैं समझता हूँ कि किसी काम का नहीं है सियाचिन में फौजों का रखना और फौजों का रहना, अगर वहाँ से फौजें हटा ली जाएँ तो मैं समझता हूँ मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो बच सकते हैं और वही साउथ एशिया के गरीब लोगों के काम आ सकते हैं। और तीसरी बात इस ज़माने में कहने की इजाज़त दीजिए कि जैसे हमारे भाई ने भारत से ये बात की ही है, देखें जब पोजीशंस होती हैं तो मिलिट्री कमांडर कभी भी स्ट्रेटजिक पोजीशन छोड़ना नहीं चाहता, और ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कही है, बिल्कुल सही दुरुस्त कही है कि इस वक्त जो भारत है, भारत की फ़ौज है सियाचिन पे, उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन है, वो ऊंचाई पे है और वो अच्छी खासी जो पाकिस्तान की मूवमेंट है उस पर नज़र रखे हुए है। तो लिहाजा इस तरफ से दोनों ममालिक के जो फौजी सरबराहान हैं या फौजी नुमाइंदे हैं, उनको इस बात पे बड़ा एक डेलिकेटली आगे जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तो पॉलिटिकल विल दोनों ममालिक में है तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन का मसला हल नहीं हो सकता। हाँ, इसमें कुछ देर लगेगी, कुछ तख़ीर होगी, लेकिन जो कियानी साहब ने बात की है और जो उसकी पेजराई भारत में हुई है और पाकिस्तान के अवामी हलकों में और सहाफ़ती हलकों में जो उसकी पेजराई हुई है, ये अच्छी है, खुशाइन बात है। देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, एक दूसरे से ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे जब अवामी लेवल पे और इकोनॉमिक लेवल पे, समाजी लेवल पे, तो ये मामलात भी हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन पे हमारे साथियों ने राबता बरकरार किया है हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान गुलाम हसन मजरू साहब से। मजरू साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकराती अमल जारी है, अभी दिफाई सेक्रेटरियों के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात के ताल्लुक से कश्मीरी लीडरशिप में क्या तासुरात पाए जाते हैं?
हमारा तो इस बारे में बिल्कुल करीब मौकफ है और हमारा मानना है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरबराहान या इनकी क़यादत आमने सामने बैठ के मसाइल को हल करे, हम तफहीम से मुज़ाकरात करें, तो सबसे बड़ी खुशी जो होगी कश्मीरी आवाम को होगी। और जहां तक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मौकफ का ताल्लुक है, तो हमारा हमेशा मानना रहा है कि सियाचिन हो, सरक्रीक हो या जम्मू कश्मीर, ये तमाम मसाइल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपसी रवाबित में सबसे बड़ी दुश्वारी और मुश्किल है। तो इन मसाइल पे अगर बात होती है या इंसान के हल के हवाले से कोई राय निकलती है तो जम्मू कश्मीर की आवाम खुशी महसूस करेंगी, लेकिन इसके साथ साथ हम चाहेंगे कि एक सिर्फ इस तरह की सियाचिन ग्लेशियर के फौज की वापसी के मसले पर ही कंसंट्रेट नहीं किया जाए। आपको पता होगा पिछले 70 साल से कश्मीरी आवाम को लटकाई रखा है दोनों ममालिक की हुकूमतों ने, और कश्मीरी आवाम पे जो मसाइल ढाए गए हैं, जो मजालिम ढाए जा रहे हैं अब भी, और यहाँ हर रोज कोई ना कोई लाशें हमें उठाने को मिलती हैं, और अब फौजी जमा जो है बेपनाह जम्मू कश्मीर में, आपको पता है कि 7.5 लाख की फौज यहाँ जमा कर रखी है हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता कुछ उर्से के दौरान। तो हम समझते हैं कि ये मसाला जी मिसरे कश्मीर जो है ये जब तक हल नहीं होता कश्मीरी आवाम की मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक, तो दोनों ममालिक की जो आपसी वरावत है उसमें अड़चन तो बनी रहेगी। और हम इसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि इस पूरे खते को, जो अब तक है जनूबी एशियाई खते को, अगर बदअमनी से या जंग से पास करना है या कशीदगी से पास करना है तो इसके लिए मसाइल का हल ढूंढना होगा। जंग का ऑप्शन तो बिल्कुल बंद ही है क्योंकि दोनों जवाहरी ममलकतें आपस में जंग नहीं कर सकती, जितना पावरफुल इंडिया है और एज वेल एज पाकिस्तान भी है कि दोनों के पास एटमी हथियार हैं मौजूद हैं, तो जंग का तस्वर भी एक पूरी इस खते की तबाही के पेश करना साबित होगी। लेकिन जंग के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता
जी जी।
और जहां तक ये दोनों दिफाई सेक्रेटरीज के बातचीत का ताल्लुक है तो हमने सुनने में आया है कि ये आगे बढ़ रहे और बातचीत को जारी रखने में उन्होंने इसका आजम जाहिर किया है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम समझते हैं कि अगर ये जंग के बादल छड़ जाए, इस खते से मुजाकरात आगे बढ़े, मुजाकरात के टेबल पे कश्मीर की मौजूदगी जरूरी है जहां तक मसले कश्मीर का ताल्लुक है, क्योंकि जो इस खते में जो सबसे ज्यादा जिन लोगों को तकलीफ है वो जम्मू कश्मीर की आवाम में, जिनको सबसे ज्यादा मसाइल का सामना है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को है। और गुज़श्ता 70 साल से ये मसला जो का तू पड़ा है और इसके हवाले से कई मुज़ाकरात के दौर भी दोनों ममालिक के आपस की क़यादत के दरमियान और जम्मू कश्मीर की कुल जमात हुर्रियत कौंसिल की क़यादत हिंदुस्तान और हुर्रियत कौंसिल पाकिस्तान की क़यादत के दरमियान, लेकिन नतायज के लिहाज से ये मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हुए हैं क्योंकि जब तक ज़मीनी सतह पर इस हवाले से कोई तब्दीली नहीं लाई जाती जिसके लिए हमने कुछ थोड़ी होती वो दो चार इनको पहले पेश कर रखी है कि कम से कम जम्मू कश्मीर से फौजी इंसाफ काम शुरू किया जाए, काले कवानीन के अफसर का खात्मा हो जाए, कैदियों की रिहाई और आजाद तजारती जोन इसको करा दिया जाए। तो हम समझते हैं कि ये एतमाद साजी के इकदाम के साथ साथ अगर बामानी मुजाकरात का सिलसिला भी आगे रखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ममालिक में जो इस मसले की वजह से हो जम्मू कश्मीर सरकारी बाकी जो मसाइल दोनों मुल्क की है तो गरीब आवाम को ये झेलना पड़ रहा है मसाइल को, हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। आपको पता है कि 40% से ज्यादा आबादी दोनों ममालिक में बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, वो इसलिए है कि दोनों ममालिक में कृषि भी है, ताल्लुकात दोनों ममालिक में ठीक नहीं है। दोनों ममालिक एक कई बार 1947 से आज तक तकरीबन 3-4 दफा आमने सामने की फौज आ गई जंग की हालत में, तो क्या जरूरी है कि करोड़ों आवाम के मुस्तकबिल को दांव पर लगाया जाए एक दूसरे आपसी अन्ना के लिए। तो जरूरत है कि तारीख में रहने के बजाय थोड़ी सी उनको मतलब जरूरतमंदी का मुजाहरा करना होगा दोनों ममालिक की क्यादत को, पाकिस्तान की भी हिंदुस्तान को भी, और कश्मीरी आवाम की क्यादत को साथ लेके टेबल पर बैठे मुजाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। और हमारा मानना है कि जंग से मसाइल नहीं हल होंगे अब की बार तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि दोनों जवाहरी ममलकत के दरमियान जंग मास डिस्ट्रक्शन ऑफ होल साउथ एशिया की सूरत में निकलेगा। तो मुजाकरात के हामी हैं लेकिन मुजाकरात बामानी हों, मसाइल के हल के लिए हों और राहत पहुंचे सभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के साथ साथ कश्मीरी आवाम को भी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। वैदक साहब, जनाब आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि हिंदुस्तान की पोजीशन सियाचिन में बेहतर है और मजबूत है, उसके यानी वो ऊंचाई पर है, बालादस्ती हासिल है। इसके लिए आपने ये कहा कि पाकिस्तान अगर कुछ ज़्यादा यकीन दहानियाँ कराए तो इस सिलसिले में हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। इस सिलसिले में मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा पाकिस्तानी हुकाम के जो बयानात इन दिनों आ रहे हैं, ख़ास तौर पर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने दो बहुत ही अहम बातें कही थी। एक बात उन्होंने ये कही थी कि अब हिंदुस्तान के ताल्लुक से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी माजी वाली नहीं रही है, अक्सर तब्दील हो चुकी है, पाकिस्तान अब हिंदुस्तान को अपना दुश्मन नहीं समझता है। एक बात ये नोट करने वाली है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर मुकम्मल एतमाद करता है। एक बात तो उनका ये ऐलान पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा का कि पाकिस्तान उनका मुल्क हिंदुस्तान को दुश्मन नहीं समझता है, दूसरी बात यह है कि एतमाद करता है। तो फिर हिंदुस्तान में बेएतमादी की वजह क्या है?
हिंदुस्तान में अक्सर लोगों के बीच ये जज्बा पाया जाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के नेताओं की बात सुनती नहीं है, लेकिन इस बार लोगों को बहुत खुशी है
जी
कि जब ये हुआ ग्यारी के अंदर जबरदस्त हादसा, उसके बावजूद जरदारी साहब आए तो हिंदुस्तान के लोगों ने महसूस किया कि ये एक बड़ी भारी घटना है और जरदारी साहब इस यात्रा को कितनी अहमियत दे रहे हैं। और मुझे याद है कि उसी दिन सुबह उनसे लाहौर में आके जनरल कयानी साहब मिले। तो अब भारत में ये कयास भी हो रहा है कि फौज और हुक्मरान अब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, इससे पॉजिटिव फीलिंग हुआ है। लेकिन अभी भी भारत में ये एक शुबा बना रहता है कि सियाचिन में जो ऊंचाइयों पर
दिल्ली से राबता कट गया है। नज़ीर हुसैन साहब, जनाब मैं आपकी तवज्जो, ये पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के बयान की बात आई है तो यहाँ पर मैं एक बात, एक नुक्ता जो उन्होंने बयान किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि अब पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित को मामूल पर लाने के लिए पूरी तरह संजीदा है और किसी चीज़ को इस राह में रुकावट नहीं बनने देगा, हत्ता मसले कश्मीर को। तो क्या ये समझा जाए कि पाकिस्तानी क़यादत कश्मीर के ताल्लुक से अपना नुक्ते निगाह तब्दील कर रही है?
फिराज साहब, दो बातें। देखिए, हमें बयानात को जो है ना वो पूरे कॉन्टेक्स्ट से समझना पड़ेगा। एक तो आपने जो बात कही है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तवसुस से, वो ये है कि अब भारत जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं रहा। ये बड़ी अजीब बात है कि अभी जो लेटेस्ट पोल यहाँ पे जो करते हैं, मुख्तलिफ सर्वेस किए जाते हैं, उसमें एक बड़ी अजीब बात है। हमारे नाज़रीन भी ये सुन के परेशान हो जाएंगे कि इस वक्त जो सर्वे हुआ है, जिसको हम गैलप पोल कहते हैं, गुज़िश्ता दो महीने पहले हुआ है, उसमें भारत को पाकिस्तान का दुश्मन नहीं करार दिया गया है, बल्कि अमरीका को पाकिस्तान का नंबर एक दुश्मन करार दिया गया। ये बड़ी अजीब बात है और हमारे नाज़रीन भी सुन के बड़े परेशान होंगे। लिहाजा ये वज़ीर ख़ारजा का बयान उस कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है
जी।
और दूसरी बात, जहाँ तक कश्मीर की, देखें पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 60-70 सालों में सिर्फ कश्मीर के मसले पर ही भारत से 3 जंगें लड़ी हैं
जी,
और कश्मीर की उन्होंने इखलाकी, समाजी, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल सपोर्ट हर हाल में जारी रखी है
जी।
इवन ड्यूरिंग जब मुशर्रफ साहब का दौर था और उन्होंने बड़े बड़े प्लान पेश किए थे, बड़ी बड़ी आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन पेश किए थे, उस वक़्त भी पाकिस्तान के जो एक ख़ास लोग थे वो ये चाह रहे थे कि जो कश्मीर की जदोजहद आज़ादी है वो जारी रहे और कश्मीर के लोग जो हैं वो अपने इस मंतकी अंजाम को पहुँचे जो उनकी आज़ादी की सूरत में या उनको जो राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन जो अक़वामे मुत्तहिदा ने उनको दी है वो हासिल कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान कश्मीर के मामले में अपना जो असूली मौक़ुफ़ है उससे कभी भी नहीं हटा, ना मुशर्रफ के दौर में हटा था, ना उससे पहले हटा था और ना आज के दौर में हटा है। हाँ, ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत हद तक तब्दील हो जाती हैं। जब ग्राउंड रियलिटीज़ तब्दील होती हैं तो नेगोशिएटिंग टेबल पे भी बातों को तब्दील होना और करना पड़ता है। अगर हम ये सोचते रहें कि जी ग्राउंड रियलिटीज़ तो गुज़िश्ता 60 साल की वही हैं और हम उसी मौक़िफ़ पे अड़े रहेंगे तो ये शायद एक ख्वाब में रहने की बात है। ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत हद तक तब्दील हो चुकी हैं और पाकिस्तान को भी देखें, इस वक्त खित्ते के हालात देख लीजिए आप, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात देख लीजिए आप, बैनुल अक़वामी हालात देख लीजिए आप। तो लिहाजा कश्मीर का हल भी जो है वो जंग की सूरत में नहीं है। 3 जंगें करके देख ली, कारगिल करके देख लिया, कश्मीर का हल जो है वो भारत के साथ नेगोशिएशंस करके उसी के हल की तरफ है। लिहाजा ये तासुर अगर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का बयान से निकल रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करके भारत के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा तो ये बात सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान के नज़दीक कश्मीर अभी तक एक बुनियादी मरकज़ नुक्ता है भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। हाँ, सियाचिन, सरक्रीक और दीगर मामला अगर हल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि कश्मीर की तरफ भी एक मेजर पेशरफ्त होगी। और ये बात हमारे नाज़रीन को भी मालूम होनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान देरपा अमन لانگ ٹرم امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف کشمیر کے مسئلے کے حل کے بعد ہی ہو سکتا ہے, کشمیر کے حل کے مسئلے کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر آج سیاچن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, سرکریک کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, دوسرے معاملات حل ہو جاتے ہیں, تو جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دیر پا لانگ ٹرم امن جو ہے وہ کبھی کامیاب یا کامران نہیں ہو سکتا. لہذا پاکستان کا موقف کشمیر کے معاملے میں دو ٹوک ہے اور وہی ہے جو گزشتہ 60 سالوں کے درمیان ہوا ہے. لیکن نیگوشیشنز کے لیے آپ کو بہت سی پوسچرنگ کرنی پڑتی ہے, بہت سے ڈپلومیٹک انیشیٹو لینے پڑتے ہیں, وہ پاکستان بھی لینے کے لیے تیار ہے اور بھارت بھی لینے کے لیے تیار.
بہت بہت شکریہ جی. ویدک صاحب, گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان تو کافی حد تک آگے بڑھا ہے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے, اور اس نے بھارت پر مکمل اعتماد کا بھی اعلان کیا ہے, اور لیکن ہندوستان میں جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جو تحفظات پائے جاتے ہیں یا بے اعتمادی کسی حد تک پائی جاتی ہے, تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
جی
کہ بھارت کے لوگوں کو ابھی بھی پوری طرح سے اعتبار نہیں ہے
جی
کہ پاکستان کا اصلی حکمران کون ہے. ابھی بھی ایک دھندلی سی تصویر بنی ہوئی ہے
جی.
اگر لوگوں کو یہ پکا اعتبار ہو جائے
جی
کہ سیاست دان وہاں کے اصلی فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں اور فوج ان کا ساتھ دے گی
جی,
تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی دقت ہے. کشمیر کا سوال جتنا الجھتا رہا ہے اتنا اب سلجھتا جا رہا ہے اپنے آپ
جی.
جیسے کہ ابھی پاکستانی مصیفی صاحب نے کہا کہ حالات بدل گئے ہیں
جی,
زمینی حالات. تو اس بات کو پاکستان کے فیصلہ کرنے والے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں
جی,
کشمیر میں جو لوگ جد و جہد کر رہے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں, اور ان سے زیادہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے ذریعے, یا میں ان کی زبان میں بولوں تو وہ قربانی کر کے اپنی سوچ رہے تھے کہ اس کو حل کر لیں گے
جی,
ان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ ہندوستان اتنا مضبوط ملک ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی برداشت کر لے گا اور ان کو ہضم کر لے گا. تو ساری یہ جو تجویزیں پہلے کی گئیں اب تک پچھلے 60-65 سال میں, وہ اب ناکام سدھ ہو چکی ہیں. تو اب ایسی تجویز کرے کہ جو کامیاب ہو
جی,
اور اس کے لیے اب پاکستان میں تیاری دکھ رہی ہے, وہ کچھ پریکٹیکل پریگمیٹک پلانس بنا رہے ہیں اور برابر ڈسکس کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب سے قریب 15-18 سال پہلے
جی
جب نرسنگھ راؤ جی کی سرکار تھی تو پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر مبشر حسن آتے تھے
جی,
اور ہندوستان کی طرف سے میں جاتا تھا. دونوں ملکوں کے جو بہترین حکمران ہیں, سب سے اونچے حکمران ہیں, ان سے ہم دونوں کی بات چیت ہوتی تھی. اس دور میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ سیاست دان تو معاملے کو سلجھا نہیں چاہتے تھے
جی.
یہ جو سیاچن کا مسئلہ ہے, نرسنگھ راؤ جی نے تو کہا کہ آپ بتائیے ہم بالکل حل کر دیں گے, لیکن ہمارے یہاں کوئی سمسیا نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم آپ کے یہاں ہے. اور ابھی بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستانی فوج اس کے لیے تیار ہو کہ دونوں کی پوزیشن جہاں ہیں وہ ٹھیک برقرار رہے اور وہ ایک علاقہ امن بن جائے یا باغ امن بن جائے, ایسی کوشش کرے تو یہ تو معاملہ حل ہی ہے. سیاچن کے معاملے میں سب سے بڑی دقت کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا پاکستان اور انڈیا کے لوگ, فوجی لوگ, کیا سیاچن میں آپس میں لڑتے ہیں؟ نہ, وہ تو لڑ رہے ہیں کسی اور چیز سے, پرکرتی سے لڑ رہے ہیں, نیچر سے لڑ رہے ہیں, اور نیچر سے لڑ کے فضول اپنی جانیں دے رہے ہیں, فضول کروڑوں روپیہ روز خرچ کر رہے ہیں. یہ پیسہ اور یہ جانیں اگر اپنے ملک کے لیے کام آئیں تو پاکستان کوئی بھارت سے الگ نہیں ہے, کوئی کشمیر پاکستان سے الگ نہیں ہے, ہم سب لوگ تو ایک فیملی ہیں. اور ایک فیملی کے لوگ دو تین جگہ بٹ جائیں اور ایک دوسرے سے لڑتے رہیں, یہ کوئی عقل کی بات تو ہے نہیں. آج ساری دنیا ایک ہونے کو بیتاب ہے اور ہم ایک اس خطے میں اپنے علاقے میں آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اب دیکھیے امریکہ جانے والا ہے افغانستان سے, بہت بادل گھرنے والے ہیں, सबसे ज़्यादा संकट परेशानी अगर किसी को होने वाली है तो पाकिस्तान को होने वाली है। आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब जुलाई 78 में इनकलाब हुआ, सरदार दाऊद आए, और जब सरदार दाऊद 78 में हटाए गए तो मिलियंस ऑफ अफगान्स कहाँ गए? वो कोई भारत नहीं आए, वो सब के सब कोई अमेरिका नहीं गए, वो सब कोई रूस नहीं गए, सारे के सारे जमा हो गए पाकिस्तान में और कुछ ईरान चले गए। अब भी अगर अफ़गानिस्तान में इनस्टेबिलिटी होती है तो लाखों अफगान कहाँ जाएंगे? पांव तो पेट की तरफ ही मुड़ते हैं, घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं। अब पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं और इसकी चिंता हमको भी है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर रहें। अफ़गानिस्तान को अगर संभालना है तो मिल के पाकिस्तान और भारत दोनों संभालें। अगर हम दोनों मिल के अफ़ग़ानिस्तान में सहयोग करें, ताऊन करें, तो मैं दावे से कहता हूं कि क्या कश्मीर और क्या सियाचिन सब चीज़ें हल हो जाएंगी। और दोनों मुल्क मिलकर, जो सेंट्रल एशिया है इतना बड़ा इलाका है, दोनों मुल्कों से कहीं बड़ा इलाका है सेंट्रल एशिया के, पांचों रिपब्लिक वो भी हमारे ही लोग हैं, उन सब से मिलकर जो ज़मीन में माल पड़ा हुआ है, खदानों में माल पड़ा हुआ है, जो गैस पड़ी हुई है, जो तेल पड़ा हुआ है, उस सब का दोहन करें और उससे पूरे साउथ एशिया को, जनूबी एशिया को मालामाल कर दें। कोई भी गरीब न रहे हमारे यहाँ, कोई भी मज़लूम न रहे हमारे यहाँ, एक खुशियों का माहौल पूरे इलाके में पैदा हो जाए। ये दोनों इलाकों के लोगों को सोचना होगा, पॉलिटिशियंस को सोचना होगा और फौजियों को खास तरह से सोचना पड़ेगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब। नज़ीर हुसैन साहब, वैदक साहब ने, हाँ, ग़ुलाम हसन मजरू साहब, जी, इनसे रबता मुनक़ा हो गया, दोबारा बरकरार हो गया। मजरू साहब, जनाब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान गुफ्तगु चल रही है, सियाचिन से फ़ौज हटाने की बात की जा रही है, काफ़ी अरसे से कश्मीरी अवाम कश्मीर से भी फ़ौज हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, इस मुतालबे पर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई तवज्जो दी जा रही है?
जी मुझसे,
जी
देखिए, मैंने दोनों हजरात की बातें सुनी, उन्होंने की कि ताल्लुकात के हवाले से, ताल्लुकात की बहाली के हवाले से, तो मैं इनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि मुज़ाकरात की आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। लेकिन जहाँ तक इस खिते में कशीदगी का ताल्लुक है दोनों ममालिक के दरमियान, तो आखिर इनके दरमियान चार जंगें क्यों हुई? सिर्फ मसले कश्मीर की वजह से ना? आज जो ये दोनों ममालिक नजदीक आ रहे हैं, तजारत को फरोग दे रहे हैं, या सियाचिन पे मुजाकरात कर रहे हैं, या आपसी ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ नहीं है, बल्कि हमारा बिल्कुल मौकफ है कि ये दोनों ममालिक का हक है, दोनों ममालिक के आवाम का हक है कि वो एक दूसरे के नजदीक आए, आपसी तजारत करें। लेकिन जम्मू कश्मीर के आवाम जो पिछले 70 साल से अपने जायज हक के लिए लड़ रहे हैं या जो अपना जायज हक मांग रहे हैं, उसको नजरअंदाज करके ये कहां का इंसाफ है कि ये दोनों ममालिक तजारत करें और जम्मू कश्मीर के आवाम मरते रहें? तकसीम के बाद से 4.5 लाख लोग कश्मीरी आवाम के शहीद हो चुके हैं और गुजशत 20 साल के दरमियान, 20 साल में ही सिर्फ 1,20,000 के करीब लोग यहाँ शहीद हुए हैं। तो मसले कश्मीर की हकीकत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इसको हल किए बगैर, जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात की एक मजबूत बुनियाद फराहम नहीं की जा सकती और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को एक सही जंग या नहज पे नहीं लाया जा सकता, क्योंकि मसले कश्मीर जो है बिल्कुल बुनियादी रुकावट ही है। सैकिन सरकली क्या, पानी के मसाइल, तजारत जैसे मसाइल तो हल होते रहेंगे, लेकिन जब तक इन मसाइल में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कश्मीर है। तो जैसे हमारे बार किसे दोस्त कह रहे थे कि आज दुनिया बदल रही है, बिल्कुल हम सहमत है इससे, बिल्कुल हमारा इतफाक है कि दुनिया बदल रही है। अफगानिस्तान में जो हालात हैं, अमेरिका को से पैसे चाहिए वहाँ, वो पाकिस्तान की मदद के बगैर वहाँ से नहीं निकल सकता। अमेरिका का भी खतरे में अपना सुख है यहाँ, और चीन की भी वजूद की ऊपर नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये पूरा जनूबी एशियाई जो खतरा है, इसको अगर इस्तेहकाम बख्शना है, अमन कायम करना है यहाँ, तो जो रुकावट है इस अमन में, जो मसाइल दरपेश हैं अमन में, तो उनको हल के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो दोनों हमसाये ममालिक कब तक जंगी लड़ते रहेंगे? तो हमारी ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के सरबराहान क़यादत आगे आए, कश्मीरी क़यादत को एतमाद में लेके टेबल पर बैठे और आपसी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल को हल करें, और जब मसाइल हल होंगे तो खुद ब खुद खते में अमन भी आएगा, लोग भी खुशहाल जिंदगी बसर करेंगे। तो फिर जो यहाँ अनसर्टेनिटी बनी है हालात के हवाले से, गैर यकीनी जो कैफियत है, बदअमनी का जो माहौल है इस खत्े में, या गरीबी जो है इस खत्े में लोगों के, करोड़ों लोगों के हवाले से, तो उसका खात्मा होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत है कि वो ये मसले कश्मीर को हल करने की, लेकिन इसके लिए दोनों ममालिक की क़यादत को हिम्मत, हौसले और पुलिस का मुजाहरा करना होगा। सिर्फ जबानी जमा खर्च है, जब तक ये जो कह रहे हैं कि मुजाकरात हो रहे हैं, कश्मीरी क़यादत कई बार दावत दी है कि मुजाकरात के टेबल पर आए, हम गए पाकिस्तान के साथ बात की, हिंदुस्तान के साथ साथ भी बात की और कुछ यकीन दहानियां कर रही हैं, लेकिन जमीनी सतह पे कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। तो जब तक ये खुलूसी नीयत से या मसाइल मसाइल के जो हल के हवाले से जब तक जरूरतमंदी का मुजाहरा नहीं करते, या हल जमीनी हकायक का इदराक करके मसाइल को हल करने के लिए आगे नहीं बढ़ते, तो तब तक मेरे ख्याल से कोई भी मुजाकराती अमल जो है नतीजा खैर साबित नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब। जनाब, जिस मसले पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तीन मुकम्मल जंगें हो चुकी हैं, उस वो मसला अगर बाकी रखा जाए, उसको हल किए बगैर दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार अमन कायम कैसे हो सकता है?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता है
जी।
मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, कोई न कोई दिक्कत हमेशा पेश आती रहेगी
जी।
लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, ये बात सही साबित होगी, मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, ये बात पक्की है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, जितना नज़दीक आएंगे, कश्मीर के अलग होने की बात उतनी ही कम होती जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर के लोग आज़ादी नहीं पा पाएंगे, आज़ादी तो उनको मिलना ही चाहिए, और मैं उनकी आज़ादी का सबसे बड़ा अलमबरदार हूँ। हालांकि मैं एक छोटा सा फ़िक्रमंद इंसान हूँ हिंदुस्तान का, न वज़ीर आज़म हूँ न वज़ीर खारिजा हूँ, लेकिन मैं ये बात पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कश्मीर के लोगों को पूरी आज़ादी, मुकम्मल आज़ादी, ज़बरदस्त आज़ादी मिलना ही चाहिए, और इसके लिए जितना हिंदुस्तान ज़िम्मेदार है उतना पाकिस्तान भी ज़िम्मेदार है। ये दोनों मुल्क मिलके कश्मीरियों को पूरी तरह से आज़ाद कर दें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, ये चाहे 50 साल लड़ें, चाहे 100 साल लड़ें, चाहे 200 साल लड़ें, कश्मीर के लोग इन दोनों मुल्कों से अलग नहीं हो पाएंगे। अलगाव एक अलग बात है, आज़ादी एक अलग बात है, ये आज़ादी तो मिल के रहेगी और वही उसी से हल निकलेगा। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के जो लोग जो बड़ी कुर्बानियाँ कर रहे हैं, शहादत कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो आजकल भारत के ख़िलाफ़ ज़्यादा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कम है। लेकिन मैं ये बात पाकिस्तान में दर्जनों बार जाके वहाँ के सियासतदानों से मुज़ाकरात करके, वहाँ के और लोगों से मिल के, फौज के लोगों से मिल के, ये बात मैं कहता हूँ कि भारत एक बार कश्मीर को ये चाहें तो छोड़ देगा, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोनों मुल्क कश्मीर को न छोड़ें, कश्मीर उनके साथ रहे, वो कश्मीरियों के साथ रहें, लेकिन दोनों मुल्क मिलकर कश्मीरियों को बिल्कुल आज़ाद कर दें, उनको ये महसूस ही नहीं हो कि हम किसी की गुलामी कर रहे हैं, ये मैं चाहता हूँ, और तभी मामला हल होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया वैदक साहब। गुलाम हसन मजरू साहब, 2 मिनट का वक्त रह गया है हमारे पास, क्या कहेंगे आप वैदक साहब की बात के जवाब में?
जैसे उन्होंने कहा कि बिल्कुल आज़ाद छोड़ दें, लेकिन आज़ाद भी नहीं छोड़ दें, या दोनों ममालिक से अलग नहीं हो सकते, देखिए कश्मीर के हवाले से अकवाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं, कि अकवाम मुत्तहिदा आलमी इदारा ये तस्लीम कर चुका है कि कश्मीरी आवाम को अपने मुस्तकबल का फैसला करने का हक दिया जाए, और हम वही हक मांग रहे हैं दोनों ममालिक के हुक्मरानों से कि कश्मीर में रायशुमारी के जरिए कश्मीरों से पूछा जाए कि वो किसके साथ मुस्तकबल व्यवस्था करना चाहते हैं। अगर इस रेफरेंडम या इस रायशुमारी का नतीजा हिंदुस्तान के हक में निकलता है तो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कोई परेशानी नहीं होगी, अगर पाकिस्तान के हक में निकलता है तो हिंदुस्तान कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये कि कश्मीरी आवाम को अपने मुस्तकबल का फैसला करने का हक दिया जाए, जो आलमी बरादरी और दोनों ममालिक की क़यादत तस्लीम कर चुकी है। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोफेसर नज़ीर हुसैन साहब, अब वक्त नहीं रह गया हमारे पास, उनसे भी हम माजरत चाहेंगे, और इसी के साथ वैद प्रताप वैदक साहब के भी शुक्रगुजार हैं, गुलाम हसन मजरू और प्रोफेसर नज़ीर हुसैन, तीनों के हम शुक्रगुजार हैं कि तीनों हजरात ने आज प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने नज़रियात से हमारे नाज़रीन को मुतला फरमाया। बहरहाल इसमें तो राय नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की क़यादतें करीब आ रही हैं, और इस सिलसिले में दो नज़रिया पाया जाता है। एक नज़रिया ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जब क़ुर्बत बढ़ेगी, जब ये अपने ज़ैली मसाइल हल कर लेंगे, तो जो बुनियादी मसला है कश्मीर का, उसके हल में मदद मिलेगी। और एक नज़रिया ये है कि जब तक बुनियादी मसला नहीं हल हो सकता है, हल हो जाता है, उस वक्त तक दोनों मुल्कों के दरमियान ना क़ुर्बत आ पाएगी और न ही उनके दीगर मसाइल हल हो पाएंगे। इस सिलसिले में नाज़रीन हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@rsahatv.ir। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।